अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, तो आज हम गोता लगा रहे हैं डगलस स्टुअर्ट के पहले उपन्यास शगी बेन की दुनिया में।
जी हाँ,
ये कोई ऐसा वैसा उपन्यास नहीं है। इसने 2020 में बुकर पुरस्कार जीता और ये हमें सीधा ले जाता है 1980 के दशक के स्कॉटलैंड, ग्लासगो शहर।
बिल्कुल, और वो भी उस ग्लासगो में जहाँ जिंदगी मतलब बिल्कुल आसान नहीं थी।
हाँ, थैचर युग का वो समय जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही थीं और मजदूर वर्ग के जो समुदाय थे उन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था।
सही बात है, और इस उपन्यास की जो आत्मा है ना, वो है खुद लेखक डगलस स्टुअर्ट का अपना अनुभव।
अच्छा।
हाँ, गरीबी में बीता बचपन, फिर एक शराबी माँ के साथ उनका जो रिश्ता था, और उस माहौल में एक समलैंगिक किशोर के तौर पर उनकी अपनी पहचान की लड़ाई, ये सारी चीजें इस कहानी को एक बहुत ही आप कह सकते हैं निजी और सच्ची गहराई देती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये प्रेम की उलझनों, नशे के अंधेरे, गरीबी की जकड़न और इन सब के बीच किसी तरह जिंदा बच जाने की एक दर्दनाक पर दिल को छूने वाली दास्तान है।
बिल्कुल सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ कहानी ऊपर ऊपर से न देखें, बल्कि उसके गहरे पानी में उतरें, देखें कि पात्रों का सफर कैसे आगे बढ़ता है, कहाँ मोड़ आते हैं
और उपन्यास किन बड़े सवालों से जूझता है।
हाँ, और खास तौर पर ध्यान रहेगा माँ और बेटे के उस रिश्ते पर, वो प्यार जो अटूट है, मजबूत है, पर कहीं ना कहीं शायद खुद को ही तबाह करने वाला भी। तो चलिए समझते हैं इसे।
तो कहानी हमें ले जाती है 1981, ग्लासगो का साइटल इलाका। यहां हम मिलते हैं बेन परिवार से।
एग्नेस बेन
दिखने में बहुत खूबसूरत, गर्व से भरी हुई, जिसके अंदर बेहतर जिंदगी के सपने हैं।
और पति?
पति है शगी सीनियर, टैक्सी ड्राइवर, पर भरोसे के लायक नहीं, बेवफा किस्म का। और उनके तीन बच्चे, सबसे बड़ी कैथरीन, बीच का लीक और सबसे छोटा हमारा शगी।
एग्नेस का किरदार, वो शुरू से ही जैसे ध्यान खींचता है ना, उसमें एक उदासी भरी शान है।
हाँ बिल्कुल, वो अपनी झूठी बत्ती सी संवारती है, अपना वो पुराना थोड़ा खिसा हुआ मिंक कोट पहनकर बाहर निकलती है।
हाँ,
जैसे इन चीजों के जरिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि देखो मैं अभी भी वही हूँ, वही आकर्षक सम्मानित महिला।
ये उसकी अंदरूनी निराशा और बाहरी दिखावे के बीच का एक तनाव है ना?
बिल्कुल, एक कवच जैसा, जैसा आपने कहा, जो असलियत की कड़वाहट से उसे बचाने की एक खैर नाकाम कोशिश है।
सही कहा, और ये शुरुआती हिस्सा ही उस पारिवारिक तनाव की नींव रख देता है जो आगे जाकर और गहराएगा।
जी,
एग्नेस की ये कोशिश सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे माहौल का भी अक्स है, 1980 का ग्लासगो,
जहां मर्दों के लिए काम नहीं था, बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं,
भविष्य धुंधला था, लोगों में एक गहरी हताशा थी।
हाँ,
एग्नेस का सपना शायद उस डूबते जहाज पर रोशनी की एक अकेली किरण जैसा है।
और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस परिवार की बची कुची उम्मीदों को भी जैसे कुचल देता है। शग सीनियर वो एग्नेस और बच्चों को पिटहेड नाम की जगह ले जाता है।
पिटहेड,
सुनने में शायद लगे कि कोई नई शुरुआत होगी, पर असलियत तो कुछ और ही है।
हाँ, पिटहेड कोई शहर नहीं बल्कि कोयला खदानों के बंद होने के बाद का एक वीरान उजड़ा हुआ इलाका है, बस धूल, गंदगी, बेरोजगारी और निराशा।
तो शक सीनियर उन्हें वहां छोड़ देता है।
बिल्कुल, असल में वो परिवार को वहां लाकर छोड़ देता है, उन्हें त्याग देता है और खुद अपनी नई प्रेमिका के पास लौट जाता है।
ओह,
ये एग्नेस के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ऐसा घाव जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया।
और यहीं से एग्नेस की शराब की लत एक भयानक रूप लेना शुरू कर देती है ना।
हाँ, उस अकेलेपन में, उस वीराने में शायद शराब ही उसे एक झूठा सहारा लगी, और यहीं उपन्यास अपने सबसे मुश्किल सवाल उठाना शुरू करता है। यहीं छोटा शगी, जो अभी बच्चा ही है,
अपने माँ का रक्षक बन जाता है, उसका देखभाल करने वाला।
यहीं हम सोचते हैं, क्या प्यार किसी को बचा सकता है, या कभी कभी प्यार ही बोझ बन जाता है? क्या प्यार विनाशकारी हो सकता है?
बिल्कुल, स्टुअर्ट यहाँ नशे की लत को सिर्फ एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं दिखाते, वो इसे एक बीमारी की तरह पेश करते हैं जो पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है। पिटहेड में शगी की जिंदगी का केंद्र अब सिर्फ एग्नेस है। वो अपनी माँ के मूड का अंदाजा लगाना सीखता है, कब वो शांत है, कब तूफान आने वाला है।
एक बच्चा,
हाँ, वो घर में छिपाई शराब की बोतलें ढूंढकर फेंकता है। वो घर का हिसाब रखने की कोशिश करता जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि माँ की पेंशन का ज़्यादातर पैसा सस्ती जिन या बेर में चला जाता है। वो माँ की उल्टियाँ साफ करता है, उसे संभालकर बिस्तर पर लेटाता है।
ये तो एक बच्चे के कंधों पर पहाड़ जैसी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, और घर के बाहर स्कूल में उसकी दुनिया और भी क्रूर है।
क्यों?
शगी दूसरे लड़कों जैसा नहीं है, वो संवेदनशील है, उसकी बोली में एक सलीका है जो उसने अपनी माँ से सीखा है। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, और यही बातें उसे दूसरे लड़कों के मजाक और धमकियों का निशाना बनाती हैं।
अच्छा,
उसे नो राइट कहा जाता है, मतलब ये ठीक नहीं है, ये लड़कों जैसा नहीं है। उसे वी पूफ जैसे भद्दे समलैंगिक विरोधी नामों से चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ चढ़ाना नहीं है, ये उसके वजूद पर हमला है।
ये बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए।
बहुत ज्यादा। और इसी माहौल में बड़ी बहन कैथरीन, जो शायद हालात की सच्चाई को सबसे ज्यादा समझती है, वो जल्दी ही शादी करके दक्षिण अफ्रीका चली जाती है।
वो चली जाती है।
हाँ, ये इसका खुद को बचाने का तरीका है शायद। उस वक्त उसके लिए यही सही रास्ता था, लेकिन उसके जाने से शगी और अकेला पड़ जाता है। परिवार का ढांचा जैसे एक एक करके ढहरा है।
शगी का किरदार सचमुच बहुत जटिल है। एक तरफ उसमें बच्चों जैसी मासूमियत है, संवेदनशीलता है,
दूसरी तरफ हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया है। उसमें एक गजब का लचीलापन है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं।
हाँ,
और माँ के लिए उसका प्यार वो किसी भक्ति जैसा है, बिना शर्त। लेकिन इस प्यार की कीमत बहुत भारी है।
क्या कीमत?
उसका अपना बचपन, उसकी अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद, सब कुछ जैसे माँ की देखभाल की वेदी पर कुर्बान हो रहा है।
और यही हमें उस दौर के ग्लासगो के समाज में गहराई तक बैठी हुई विषाक्त मर्दानगी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसे कहते हैं, उसकी झलक मिलती है।
क्या मतलब है इसका?
ये मर्दों पर समाज का वो हानिकारक दबाव है कि उन्हें हमेशा सख्त दिखना है, भावनाएं जाहिर नहीं करनी, रोना कमजोरी है, और किसी भी तरह की नरमी या अलग पहचान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शगी का संघर्ष सिर्फ गरीबी या माँ की लत से नहीं, बल्कि इस जहरीली सोच से भी है। उसकी समलैंगिकता, जो अभी शायद उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आई है, उसे और भी ज्यादा हाशिए पर धकेल देती है। ऐसा लगता है लेखक अपने निजी अनुभवों को यहाँ आवाज दे रहे हैं। लेकिन कहानी पूरी तरह निराशा की तो नहीं है, बीच में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। शायद एग्नेस शराब छोड़ने की कोशिश करती है।
हाँ हाँ बिल्कुल, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA की मीटिंग्स में जाना शुरू करती है। AA वो समूह है जहाँ शराबी एक दूसरे का सहारा बनकर नशे से दूर रहने की कोशिश करते हैं।
अच्छा,
इसी दौरान उसकी जिंदगी में यूजीन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर आता है। यूजीन शगी के प्रति स्नेह दिखाता है, एग्नेस का साथ देता है करीब एक साल तक। ऐसा लगता है कि जिंदगी पटरी पर लौट आई है।
एक साल
हाँ, घर में शांति है, एक सामान्य जीवन की हल्की सी झलक दिखती है। शगी को भी शायद पहली बार पिता जैसे किसी सहारे का एहसास होता है।
लेकिन ये उम्मीद, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाती है ना। ये उपन्यास हमें बार बार दिखाता है कि कैसे इस माहौल में खुशियां कितनी नाजुक होती हैं।
बिल्कुल, यूजीन खुद भी कभी कभी पी लेता है, और शायद वो एग्नेस की भावनात्मक जरूरतों और उसके अंदर की जो उथल पुथल है उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता या संभाल नहीं पाता।
फिर क्या होता है?
एक शाम एक डिनर पार्टी में एग्नेस को लगता है कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है। उसका वो स्वाभिमान जिसे वो हमेशा बचाने की कोशिश करती है, वो बुरी तरह आहत होता है, और वो सबके सामने बुरी तरह से फिर पीना शुरू कर देती है। ये पतन इतना सार्वजनिक और शर्मनाक होता है कि यूजीन रिश्ता तोड़कर चला जाता है,
उम्मीद का वो दरवाजा भी
बंद,
बंद,
थम से बंद हो जाता है। और इस घटना का असर सिर्फ एग्नेस और यूजीन के रिश्ते पर नहीं पड़ता,
पूरे परिवार पे पड़ता होगा।
हाँ, इसके कुछ समय बाद बड़ा भाई लीक भी घर छोड़ देता है।
लीक भी? क्यों?
वजह, एग्नेस शराब खरीदने के लिए उसकी कुछ सहेज कर रखी हुई कीमती चीले बेच देती है। लीक के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, वो भी चला जाता है।
तो अब शगी
अपनी माँ की देखभाल के लिए सचमुच अकेला रह जाता है। परिवार का जो बिखरा हुआ ढांचा था वह पूरी तरह ढह चुका है।
एग्नेस का किरदार, अगर हम उस पे फिर से नजर डालें तो वो कितनी त्रासद और विरोधाभासी लगती है। वो एक शिकार है अपने पति के धोखे की, गरीबी की, समाज की उदासीनता की।
लेकिन नशे की हालत में वो अपने सबसे प्यारे बेटे शगी को भी अनजाने में चोट पहुंचाती है।
हाँ, उसका वो गर्व, उसकी सुंदरता की चाह, बेहतर जीवन की वो अधूरी इच्छाएं, सब शराब के नशे में धीरे धीरे घुल जाती हैं। उपन्यास में एक पंक्ति है जो दिल चीर देती है। शराब ने उसे भुला दिया था कि वो शानदार थी।
द ड्रिंक हैड मेड हर फॉरगेट दैट शी वॉज मैग्निफिसेंट।
हाँ, ये दिखाता है कि नशा कैसे इंसान के आत्ममूल्य को ही दीमक की तरह खा जाता है।
और वो प्रतीक झूठी बत्तीसी, मिंक कोट अब और भी ज्यादा चुभने लगते हैं। ये उसके उस शानदार अतीत की धुंधली यादें हैं जिसे वो पकड़कर रखना चाहती है, पर जो अब हाथ से फिसलता जा रहा है।
बाहरी दुनिया के लिए वो अब भी शायद वही एग्नेस बेन बनना चाहती है, लेकिन अंदर से वो जानती है कि वो खो चुकी है।
उसकी ये लड़ाई बहुत मार्मिक है।
कहानी का अंत नजदीक आते आते उन्हें ग्लासगो के ईस्ट एंड की एक और सरकारी हाउसिंग स्कीम में भेज दिया जाता है। यहाँ का माहौल शायद पिठेट से भी ज्यादा खराब।
हाँ, और एग्नेस अब वो अपनी पुरानी छवि की बस एक परछाई मात्र रह गई है। शराब ने उसकी शारीरिक सुंदरता छीन ली है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है।
और शगी
जो अब किशोर हो चुका है, वो अभी भी किसी जिद्दी सैनिक की तरह अपनी माँ की देखभाल में लगा है, लेकिन अब शायद उसके मन में भी ये बात घर करने लगी है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रहे हैं। वो अपनी माँ को बचा नहीं पा रहा।
एक थकान,
हाँ
एक निराशा,
हाँ एक निराशा अब उसके प्यार पर हावी होने लगी है।
और फिर एग्नेस का अंत आता है, बिना किसी शोर शराबे के, बेहद अकेलेपन में।
हाँ, वो बिस्तर पर अकेले ही नशे की हालत में अपने ही लार में दम घुटने से मर जाती है।
ओह,
कोई विदाई नहीं, कोई आखिरी शब्द नहीं। शगी स्कूल से लौटकर आता है और उसे अपनी माँ का बेजान शरीर मिलता है। ये उस दुनिया का अंत है जिसके इर्द गिर्द शगी की पूरी जिंदगी घूमती थी।
बड़ा आघात है, लेकिन शायद बहुत क्रूर तरीके से ही सही, एक तरह की अनचाही मुक्ति भी।
शायद
उपन्यास का उपसंहार हमें कुछ साल आगे ले जाता है, 1992। शगी अब 15 साल का है।
वो एक बोर्डिंग हाउस में अकेला रहता है और एक सुपरमार्केट के डेली काउंटर पे काम कर रहा है।
सबसे जरूरी बात, वो जिंदा है।
हाँ, वो उन मुश्किल हालात से गुजरकर बाहर निकल आया है, लेकिन जख्म गहरे हैं।
एग्नेस और उसके रिश्ते की जटिलता, वो एक पंक्ति है जो हमेशा याद रह जाती है। वह उसकी माँ थी और वो शानदार थी। वो मर भी रही थी और वो उसे अपने साथ ले जा रही थी।
She was his mother and she was magnificent. She was also dying and she was taking him with her. ये बताता है कि कैसे एग्नेस का प्यार और उसकी बीमारी दोनों शगी के वजूद का हिस्सा बन गए थे।
और शगी अब प्यार को भी एक नई, शायद ज्यादा कड़वी नजर से देख रहा है। क्या उसका वो समर्पण सचमुच प्यार था या अकेले रह जाने का डर?
हाँ, उपन्यास की एक पंक्ति इस पर सोचने को मजबूर करती है। प्यार एक झूठ हो सकता है जो आप खुद से कहते हैं जब आप अकेले होने से डरते हैं।
लव कुड बी अ लाई यू टोल्ड योरसेल्फ व्हेन यू वर अफ्रेड टू बी अलोन। एक किशोर के लिए ये बहुत भारी समझ है,
उसके अनुभवों से जन्मी है।
लेकिन अंत पूरी तरह अंधेरे में नहीं डूबता, एक उम्मीद की हल्की सी लौ जलती हुई दिखती है।
हाँ बिल्कुल, अंतिम दृश्य में शगी अपनी सहकर्मी लीन से मिलता है। लीन भी जिंदगी के थपेड़े खा चुकी है और वो शगी को बिना किसी जजमेंट के जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करती है। और जब शगी लीन और उसके कुछ दोस्तों के साथ शहर के बीचों बीच एक फवारे में बच्चों की तरह बेफिक्री से नाचता है,
हाँ वो दृश्य,
उस लम्हे में एक आजादी का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो।
वो दृश्य वाकई ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि शायद अब वो अपनी माँ के दुखद परछाई से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान और अपनी खुशियां तलाश पाएगा। उसकी उत्तरजीविता, उसका उन हालात से बच निकलना ही अपने आप में एक जीत है।
बिल्कुल, उपन्यास में एक और पंक्ति है जो इस उम्मीद को बल देती है। ये अजीब था कि दुनिया कितनी उजली थी जब आप लगातार डरे हुए नहीं थे।
ये पंक्तियां जैसे शेगी के बेहतर भविष्य की तरफ एक नाजुक सा इशारा करती हैं।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटने की कोशिश करें तो ये उपन्यास कई स्तरों पर हमसे बात करता है।
पहला,
ये दिखाता है कि वर्ग और आर्थिक असमानता लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा और विनाशकारी असर डाल सकती है। खासकर थैचर युग की उन नीतियों ने कैसे पूरे के पूरे समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया।
हाँ, दूसरा, ये नशे की लत को सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या न मानकर पूरे परिवार पर उसके असर को दिखाता है। कैसे बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, कैसे रिश्ते बिखर जाते हैं।
तीसरा, ये प्रेम और वफादारी की सीमाओं पर सवाल उठाता है। शगी का प्यार महान है, लेकिन क्या वो प्यार एक हद के बाद खुद उसके लिए विनाशकारी नहीं बन गया? कहाँ देखभाल खत्म होती है और कहाँ खुद को मिटा देना शुरू होता है?
बिल्कुल। चौथा, ये एक बेहद प्रतिकूल और अक्सर हिंसक माहौल में अपनी लैंगिक पहचान, अपनी सेक्सुअलिटी और अस्तित्व को समझने और बचाने के संघर्ष को दिखाता है। शगी का अलग होना उसे लगातार खतरे में डालता है।
और सबसे बढ़कर ये मानवीय लचीलेपन, ह्यूमन रेजिलियंस और बेहद मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने और शायद अंत में थोड़ी सी उम्मीद खोजने की अद्भुत क्षमता की कहानी है।
और लेखक डगलस स्टुअर्ट की शैली वो भी इस कहानी को यादगार बनाती है। उन्होंने तीसरा पुरुष सीमित दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है।
हाँ, कहानी मुख्य रूप से शगी और कभी कभी एग्नस के नजरिए से कही जाती है। इससे हम उनके अंदरूनी विचारों, उनके डर, उनकी उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस कर पाते हैं।
और वो स्कॉटिश बोली का इस्तेमाल,
हाँ, स्कॉटिश डायलेक्ट का जिस प्रामाणिकता से उन्होंने उपयोग किया है वो किरदारों और माहौल को एकदम असली बना देता है। ऐसा लगता है हम वहीं ग्लासगो की सड़कों पर उनके साथ चल रहे हैं।
ये उपन्यास मुश्किलों, गरीबी और नशे का बेहद सच्चा और कभी कभी क्रूर चित्रण करता है, लेकिन इसके बावजूद ये मानवीय गरिमा, सहानुभूति और करुणा का दामन कभी नहीं छोड़ता।
अंधेरे से अंधेरे लम्हों में भी इंसानियत की कोई छोटी सी किरण टिमटिमाती रहती है।
बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि प्यार में कितनी ताकत हो सकती है।
लेकिन ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी प्यार भी किसी को बचाने के लिए काफी नहीं होता। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। ये हाशिए पर पड़े लोगों को एक बुलंद और यादगार आवाज देता है। अनिवार्य क्लोजिंग लाइन, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।